ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। मनुख दे अचेतन मन विच पूर्ण होण दी बड़ी प्रबल प्यास है। हर वक्त मनुख दे प्राणा विच ये ख्याल बनिया रहिंदा है, मैं अधूरा मैं अधूरा, मैं इस कम विच अधूरा, मैं उस माहौल विच अधूरा। पूर्ण होण दी प्यास हर पल और हर दिन मनुख दे अंदर उजागर होंदी रहिंदी है। दरअसल असी देखते हैं कि जो चीज़ा जो वस्तुआ या जो हस्तियाँ सानू प्रभावित कर दियां वो पूर्ण होंदियां। अधूरी चीज़ तो मनुख प्रभावित नहीं होंदा। अधूरी संगीत दी धुन चंगी नहीं लगती, अधूरी कविता काबले सुनीद नहीं है। अधूरा बनिया होया मकान जिस दियां दीवारां खड़ियां छत नहीं है, वो काबले रिहायश नहीं है। जिथे अधूरा मकान अधूरी संगीत दी धुन अधूरी कविता अधूरा चित्र अधूरा घड़िया होया बुत नहीं चंगा लगता, उत्थे अधूरा मनुख भी नहीं चंगा लगता। मनुख दा संपूर्ण होना बड़ा लाजमी है। बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त बंदा मर जाता है तो लोग कहते हैं ये पूरा हो गया, ये जमया अधूरा, ये जीविया अधूरा, ये मर के किस तरह पूरा होया। मरे हुए मनुख नूं ये कह देना ये पूरा हो गया है, अचेतन मन विच सुभाव के गल निकल आई है कि मनुख पूर्ण होने वास्ते ही आया है। ये गल वक्री है कि मरे हुए नूं असी कह देंदे हां पूरा होया है, जबकि मौत दे नाल कोई पूरा नहीं आता। जो सही ढंग नाल जीविया है ते जीवन विच जो पूरा नहीं होया वो मर के कतई पूरा नहीं होता, वो अधूरा ही मरिया है, अधूरा ही जीविया। इतनी गल स्पष्ट है कि मनुख पूर्ण होने की बड़ी प्रबल प्यास अपने अंदर रखता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जब मनुखता ते झात मारी तो की देखिया, मनुख अधूरा है और अधूरा है इस वास्ते दुखी है, बेचैन है, परेशान है। गुरु नानक दे ए बचन तो संसार प्रसिद्ध हो गए कि बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। असी गौर नाल देखते हाँ निर्धन का दुखी होना कुदरती गल है, पर धनवान भी दुखी है। निर्गुण का दुखी होना सुभाविक है, पर बड़े तो बड़ा गुणवान भी दुखी है। बीमार तो दुखी है, तंदुरुस्त भी दुखी है। इत्थे जो कमजोर है, लागर है, वह दुखी होवे सुभाविक है, पर इत्थे बड़े बड़े सताधारी और पहलवान बलवान भी दुखी ने। दुख समगर है, दुख ने मनुख नूं चारों पासे तो घेरिया होया है और दुख की लपेट विच मनुख रोज बरोज कसदा ही जा रहा है, होर बनीजदा जा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान कि दुख का जन्म अधूरेपण तो है, सुख ते आनंद का जन्म पूर्णता तो है। मनुख अधूरा है इस वास्ते दुखी है। तो मेरे पातशाह ने पूर्ण मनुख की कल्पना की थी, मनुख नूं पूर्ण करना है, मनुख नूं मुकम्मल करना है। जब कोई कवि किसी कविता नूं जन्म देंदा है तो कल्पना की दुनिया विचों उसनूं लंघना पैंदा है। संगीत दी पहले धुन दी पहले संगीतकार कल्पना करता है, फिर उसनूं साकार रूप देंदा है। एक चित्रकार पहले तस्वीर नूं अपने ख्यालां विच लियांदा है, फिर उसनूं साकार रूप विच प्रगट करता है। तो पूर्ण रूप नूं पहले गुरु नानक देव जी महाराज कल्पना विच ले आए ने कि पूर्ण जो मनुख है वो किस तरह का होवे और उसनूं किस ढंग नाल बनाना है, ये मेरे पातशाह ने खाका चित्रिया पूर्ण मनुख का, पूर्ण इंसान का। और इतनी गल स्पष्ट है कि जिहड़ी भी चीज़ सानू बहुता प्रभावित करेगी वह पूर्ण होवेगी, अधूरी चीज़ प्रभावित नहीं करती। अधूरा ते कुछ भी नहीं चंगा लगता, संपूर्ण चंगा लगता है, पूर्ण चंगा लगता है। तो पूर्ण मनुख दा खाका चित्रिया गुरु नानक ने, ते ए दुनिया दा सब तो औखा कम है कि मनुख नू पूर्ण कीता जाए। किसे संगीत दी धुन नू पूर्ण कर लेना, कविता पूरी कर लेनी, किताब पूरी लिख लेनी, बुत पूर्ण रूप दे घड़ लेना, तस्वीर पूर्ण बना लेनी, इतनी औखी गल नहीं जितना कि जीवदे जागदे मनुख नू पूर्ण करना। क्योंकि मनुख इनकारी भी हो सकता है। किसे बुत नू घड़ना होवे तां पत्थर इनकार नहीं करदा कि मैनू घड़ो ना, वह बिल्कुल इनकारी नहीं होंदा। लेकिन मनुख नू घड़न लगी है ते उनू आखिए तेनू सुंदर बुत दी शकल देनी है, तेनू सुंदर मुजस्मा बनाना है, तेरे विच कुछ फालतू टुकड़ियां नू तराश के अलग करना है, तो मनुख इनकारी भी हो सकता है। इस वास्ते मनुख नू घड़ना, मनुख नू पूर्ण करना बहुत कठिन है, बहुत औखा है। मनुख नू पूर्ण करन लग्यां गुरु नानक नू 250 साल लगे। इस वास्ते गुरु नानक नू 10 जामे धारण करने पे, 10 शरीर धारण करने पे। पहले जामे विच गुरु नानक ने कल्पना ही कीती पूर्ण मनुख दी, ते उस दा खाका चित्रिया। बाकी दे 9 गुरुआं ने उस खाके विच रंग भरे। संसार विच असीं ऐसियां अणगिणत किताबां देखदे हां जिसनू एक लेखक ने नहीं लिखिया, 2-3 लेखकां ने मिल के लिखिया। कई ऐसियां संगीत दियां धुनां ने जिसनू एक संगीतकार ने तैयार नहीं किया, 2-3 ने मिल के तैयार किया होंगे। इसी तरीके नाल अणगिणत तस्वीरां ने जिसनू एक चित्रकार ने नहीं बनाया, कईयां ने मिल के बनाया। गुरु नानक ने जिस पूर्ण मनुख की कल्पना की सी, जिसका खाका चित्रिया सी, इसनू 10 जामियां विच संपूर्ण किया, मुकम्मल किया। जो पूर्ण मनुख की कल्पना ते खाका चित्रिया गुरु नानक ने, उस पूर्ण मनुख का नाम रखिया सिख। ये सिख है, सिख का मतलब है मैं सीखण नू तैयार हाँ, मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता। सिखी भाव उस दे अंदर पैदा होवेगा जो अंदरों कबूल कर लवे मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई भी बोध नहीं। और इतना भाव जद पैदा होवेगा वो सीखण नू राजी हो जाएगा, ते जद सीखण नू राजी होवेगा तो सिखी जज्बात उस दे अंदरों फुट पैणगे। गुरु नानक ने इस तरह दे पूर्ण मनुख दी कल्पना की थी। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने उस खाके विच जिहड़ा रंग भरिया है, वह इतिहास नू पढ़न तो बाद जो विचार सामने आईए, हुक्म मनण दा जो रंग है ये गुरु अंगद देव जी महाराज ने भरिया। हुक्म मनना, कहिंदे जिस तरह मनुख दे अंदर भोजन दी भुख है, औलाद दी भुख है, धन दी भुख है, हुक्म करन दी भी भुख है। जिस तरह भोजन वक्त सिर ना मिले तो भुख तो बंदा दुखी होंदा है। कोई हुक्म ना मन्ने, इन अगला इनकारी हो जाए तो भी बंदे नू बड़ी चोट पहुँचती है, बड़ा दुखी होंदा है। मनुख दी हमेशा कोशिश रही है कि सारा संसार मेरा हुक्म मन्ने, पर जे इतना समर्थ ना हो सके, इतना महान ना हो सके, तो फिर सोचता है कोई गल नहीं, कम से कम समुच्चा मुलक ते मेरा हुक्म मन्ने। पर मुलक दे बंदे भी बागी होवन, हुक्म मन्नण नू तैयार ना होवन, ते इस दी ताकत भी बहुत ज़्यादा ना होवे, फिर अपने आप नू तसल्ली देंदा है कोई गल नहीं, जिस शहर विच मैं रहना कम से कम समुचे शहर वासी तो मेरा हुक्म मनन। इस वास्ते असी देखते हाँ कोई मुल्कां दे चौधरी बन दिन, कोई शहरां दे चौधरी बन दिन, कोई पिंडां दे चौधरी बन दिन, कोई मोहल्लियां दे चौधरी बन दिन, मतलब इतना ही आता है कि हुण मोहल्ले वाले कम से कम हुक्म मनन। पर मोहल्ले वाले भी इनकारी हो जान तो फिर बंदा सोचता है कोई गल नहीं, हुण समुचे घर वालों मेरा हुक्म मनना ही चाहिए। पर जे किधरे घर वाले भी इनकारी हो जान तो मनोविज्ञानी ऐसा कहें फिर मनुख का जोर है कि घरवाली नू ते हुक्म हर हालत विच ही मनना चाहिए। रब की नेत वो भी किधरे ख्यालां नाल सहमत ना होवे ते हुक्म मनन नू राजी ना होवे तां कहिंदे बंदे का सुभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਮਨਸਵਿਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਨਾਵਣ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਬੱਚਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਠਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੀ, ਔਰ ਦਰਖਤ ਜੰਡਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਲਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ। ਲਹਿਣਾ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਪਗਲਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਟਪਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੋ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਟਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੋ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਟਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਸ ਖਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬੋਸੀਦਾ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੋ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਗਰ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ 'ਤੇ ਉਪਜੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਝੱਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਰਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि समुचा अरब उत्थों की इस्त्री जात पड़दे विच ढकी हुई है, बुरके विच कैद है। एक चलदी फिरदी कैद उस दे कोल अठे पैर मौजूद है। जिथे अरब ढकिया होया बुरके विच, उत्थे ईसाई जगत विच असी देखदे हां बड़ी प्रबल नग्नता है। पर्दे की मुखालफत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बड़े पुरजोर शब्दों भगत कबीर ने भी की है। आप दा फरमान है, रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिनका डे, अंत की बार लहे गेना आंडे। ऐ स्त्री ऐ बहु तू इस घुंड नू रहन दे, क्यों के घूंघट तेरो तो ऊपर साचे, हर गुण गाए कुदे अरनाचे। जिस दे मुखड़े देते शर्म दा घुंड है, हया दा घुंड है, सच दा घुंड है, उनू कपड़े दे घुंड दी लोड़ नहीं। कपड़े दा घुंड तां उसनू चाहिदा है जिहदे कोल शर्म नहीं, हया नहीं, सच नहीं। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज ने साफ कह दिता, इस्त्री कोई संपदा नहीं, धन नहीं, किसनू कपड़े दे छुपा के रखिए, लपेट के रखिए। पर्दा अणगिणत शरीरक बीमारियां नू भी जन्म देंदा है। दूसरे पासे असी देखदे हां ईसाई जगत बहुत नंगा है, बहुत नंगा है। अरब ढकिया होया यूरोप नंगा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने दोवें गल्लां दी मुखालफत की थी कि वह पर्दा भी नहीं चाहिदा जो इस्त्री दे सिर दा बोझ बन जाए, पर वह नग्नता भी नहीं चाहिदी जिथों इस्त्री दी बेशर्मी रोम रोम दे टपक के बाहर आवे। आपदा फरमान है, रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा भाल। धार्मिक दुनिया विच आईयां हुईयां कुरीतियां, लोकी शगन अपशगन दे पुजारी सन, चलदे हुईयां किसे नू निच आ जाए तां इस नू बदशगनी मनदे ने। रस्ते च कोई बिल्ली रस्ता कट जाए इसनू बदशगनी मनदे ने। किसे काम ते चले है बार खोता बोल पे है इनू बदशगनी मनदे ने। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा फरमान, शगन अवशगन तिसको लगे जिस चीत ना आवे। शगन अवशगन दी मनोत उस दुनिया दे च है जिथे प्रभु चिंतन ने, जो ये समझदा है कि सब कुछ परमात्मा दे हथ दे च है, वह इन्हां बोसीदे रस्मों रिवाज का पुजारी नहीं होंदा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का भी बड़ा सुंदर फरमान है, जब आपन आप उरधारे तो शगन अपशगन कहां बिचारे। सब कुछ परमात्मा दे हथ है, शगन अपशगन दे हथ दे कुछ भी नहीं है। और हर वक्त मनुख नूं अपनी डोरी परमात्मा दे हथ दे सौंक के रखनी चाहिए, उहदे हथां विच थमाना चाहिए। एक ऐसा पुरश गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार में लिया गया जिदे बारे उदे शरीक कहें सन, इनू भूत चंबड़े ने, इनू प्रेत चंबड़े ने, पातशाह ये भूत प्रेत तुसी उतारो। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने इस कथा नू बड़े रोचक ढंग नाल लिखे है। श्री मुख ते तब उत्तर कहो, प्रेत लग्यो जै सिख को लयो, सोने पड़त होत जप रसना, जिन्हों कंठ तिन पर कछ बसना। साहिबां दा फरमान भी ये जिहड़ा प्रेत लग्या होया तुसी सिख लिआंदा है, इहदे कंठ विच जपजी नहीं होवेगी, इहदे हिरदे विच परमात्मा दा नाम नहीं होवेगा। तो जिहदे कंठ विच जपजी नहीं, जिहदे हिरदे विच प्रभु दा प्यार नहीं, ऐसे बंदिआं नूं की भूत ने चंबड़ना है? उह ते स्वयं भूत आउंदे ने, ते स्वयं प्रेत होंदे। कबीर का भी कहना है, जै घर साध न सेविए, हर की पूजा ना है, ते घर मरहट सार के, भूत बसे तिन माए। दरअसल एक मानसिक रोग है और उस वक्त पैदा हो जाता है जब मनुख प्रभु चिंतन तो बहुत दूर चला जाए और उसके कंठ दे गुरदेव की बाणी ना हो। इस तरह दियां तमाम चलिया आ रही मनोता सिख जगत दे गुरु अमरदास जी महाराज ने बिल्कुल कट दिता। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज ने उस खाके देच केड़ा रंग भरे है जिस खाके दा चित्रण कीता सी गुरु नानक देव जी महाराज ने। धर्म मंदरां दी उसारी दा जो जज्बा है ये गुरु रामदास जी महाराज दी देन है। सतगुर दा फरमान सी ऐ सिख जिथे बैठ के तू परलोक सवारना है प्रभु दा चिंतन करना है वो घर भी बहुत सुंदर होना चाहिए और तू ऐसे घर भी तामीर कर जिन्हां घरां दे उत्ते दूसरे भी दावा कर सकन। जैसे कि असी देखते हैं महाराज ने धर्मशाला सरावां दी बकायदा बुनियाद रख के तामीर शुरू कराई जिथे आम साधारण मनुख आराम नाल रह सकन मुसाफर रह सकन जो सांझा घर होवे किसी एक व्यक्ति का ना होवे। इस तरह के जज्बे साहिब गुरु रामदास जी महाराज की देन ने और ये बरकत असी देखते हैं कि सिख का अपना घर भावें कच्चा होवे पर वो गुरु का घर संगे मरमर का वेखना चाहता है। उसके अपने घर भावें पित्तल भी ना होवे पर गुरु का कलस ते वो सोने का वेखना चाहता है। ये उसकी शरदा है ये उसकी भावना है और ये जज्बा गुरु रामदास जी महाराज की देन है। जिस मनुख के अंदर धर्म मंदरां की उसारी का जज्बा खत्म हो जाए समझ लेना चाहिए उसके अंदर गुरु रामदास जी का रंग नहीं है। तो जो रसम वहम तो मात का पुजारी होवे उस मनुख के अंदर गुरु अमरदास जी की छोह नहीं है। तो जिस सिख के अंदर हुक्म मनन की भावना ही ना हो समझ लेना चाहिए गुरु अंगद देव जी महाराज की विचारधारा उसके अंदर नहीं वसी। जो खाका पूर्ण पुरख का गुरु नानक ने चित्रे है पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस खाके देच शांति का रंग भरे है। हर हालत देच ऐ सिख तू शांत रहना है। शांति की बकायदा एक कसवटी है। अगला सामने क्रोधी खड़ा होवे और उदे बड़े तपे हुए शब्द निकल रहे हों ते फिर भी कोई शांत रह सकता है तो समझ लेना चाहिए ये मनुख अंदरों शांत हो गया। जब मैनू कोई कहता है कि फलाना मनुख तो बिल्कुल शांतमई है फलाना बिल्कुल त्यागी है तो कई दफा मैं नहीं मनता कारण कि कसौटी है। जैसे एक माचिस की डब्बी नू मेरे सामने कोई लियावे तो आखे देखो ये ठंडी है बिल्कुल ठंडी है तपश तो रहत है तो कहना पेगा भी एक तीली कढ़ के जरा रगड़ के वेख अग है कि नहीं। एक एक तीली दे अग है रगड़न की देर है मनुख दे अंदर बहुत अगन है बड़ी अगन है। थोड़ा जिहा छेड़न की देर है मनुख दे अंदरों क्रोध भी पैदा हो जाता है लोभ भी पैदा हो जाता है वाशना भी पैदा हो जाती है। जिवें माचिस की डब्बी दे गालबन 60-70 तीलियां ने मनुख दे अंदर अणगिणत चिंगारियां ने बहुत सारे भांबड़ ने बस उकसाहट दे नाल ये अगन जेड़ी है पैदा हो जाती है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कितने शांत ने कि वह तत्ती तवी ते बैठ के भी शांत ने। अक्सर मनुख ठंडे कमरियां च बैठ के भी गर्म हो जाता है ठंडे पहाड़ां ते बैठ के भी क्रोधित हो जाता है ठंडियां छावां थले बैठ के भी अंदर तृष्णा की अग और क्रोध के भांबड़ उसके अंदर बल उठते हैं। पर कोई तत्ती तवी ते बैठ के भी शांत रह सकता है शीतल रह सकता है ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की महान खूबी है। शांति का रंग जिथे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भरिया इस शांति नू कोई बुजदिली ना समझ लवे कायरता ना समझ लवे तो छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रंग उस खाके दे भरिया। सिख का वीर रस होना भी बड़ा लाजमी पर उसका वीर रस शांति दे चों पैदा होवे। जो वीर रस शांति दे चों जन्म नहीं लैंदा उसनू क्रोध कहिंदे ने वह वीर रस नहीं है। क्रोधी मनुख हमला आवर होंदा है पर जो वीर रस अपने अंदर रखता है वह धर्म का मुआफिज होंदा है कौम का रखवाला होंदा है देश का रखवाला होंदा है। इस वास्ते वह अपने वीर रस का इस्तेमाल करता है। दबस्ताने मजाहिब दे करता जनाब मोहसन फानी जो एक उगे लेखक होए ने और इतिहासकार होए ने वो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बारे लिखते हैं कि एक मुगल सिपा सालार ने यके बादीगरे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ते पंज वार कीते तलवार दे छेवें पातशाह ढाल नाल उस वार नू रोक दे रहे। ਉਹ ਵਾਰ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਚੁਣਾ ਨਮੀ ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਦਨ ਈ ਅਸਤ। ਐ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ, ਤਲਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਇੰਜ ਚਲਾਈ ਦੀ। ਮੁਹੱਸਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਦੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਹਾਕੇ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਣ, ਅਣਖ, ਖੁਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹ ਬੈਠਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਾਕੇ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਨਾ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾ ਕਰ। ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਪੀਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ? ਗਰਦਨ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਔਰ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਰੂਪ ਕਬੀਰ ਪੇਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਨੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੱਚਾਈ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਜਦ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ फिर शोभा सुनन दी भी उस दे अंदर भुख आउंदी है। कबीर कहिंदे मैं कन्ना नाल हुण अपनी शोभा नहीं सुनदा ते मैं नक रखण वास्ते कम नहीं करदा, मैं ते सच्चाई नूं मुख रख के ही कर्म करदा, ईश्वर नूं मुख रख के ही कर्म करदा। गुरु हर राय साहब जी महाराज का यह कहना, ऐ सिख तू नक रखण वास्ते कम नहीं करना, तू सच नूं रखण वास्ते, सच्चाई नूं रखण वास्ते, धर्म नूं रखण वास्ते कर्म करना है और तू नुमाइशी ना बन। इस तरह की सादगी का जो रंग है, हकीकी जो रंग है, गुरु हर राय साहब जी महाराज ने उस खाके च भरिया। बाला प्रीतम बाल उम्र दे गुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज अठवें गुरु नानक ने उस खाके विच केड़ा रंग भरिया, यह गल भी काबले सुनीद है। साढ़े देश के चंद आलमां का ऐसा कहना है कि बुजुर्गी जिहड़ी है यह 35 साल तो शुरू होंदी है। 35 साल तो उम्र जिसकी थले है, घट है, उहदे बोल विच बचकाना होवेगा, उहदे बोल सही नहीं होणगे, उहदी गल विच पुख्तगी नहीं होवेगी, उहदे बचना विच दूर दृष्टि नहीं होवेगी। इस वास्ते साढ़े देश का आलमां का प्राचीन समय तो यह नारा लिया है कि जिसनों समाज का मुखी बनाना है, धर्म का मुखी बनाना है, राजनीति का मुखी बनाना है, उसकी उम्र घट तो घट 35 साल होनी चाहिए या 35 साल तो वध होनी चाहिए। 35 साल तो बिल्कुल थले ना होवे, क्योंकि वह बच्चा है, उसकी गल दे पुख्तगी नहीं होगी और वह दूरदृष्ट नहीं होगा। बुजुर्गी नूं उम्र दे नाल ये नापण का एक रिवाज चलिया। गुरु घर ने इस गल नूं नहीं मनिया कि शरीरक उम्र दे नाल ही अकल का संबंध है, इस गल नूं नहीं मने। ईरान दे एक प्रसिद्ध संत शेख सादी साहब भी करीबन करीबन गुरु घर नाल सहमत ने। आप दा कहना है, बजुर्गी बा अकल अस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त नके बा माल। वो कहिंदा है बजुर्गी दा संबंध अकल नाल है, उम्र दे नाल नहीं। किसी हद तक अज साइंस भी सहमत हो गई है कि मनुख की शरीरक उम्र तो 80 साल की हो जाती है, लेकिन दिमागी उम्र 12 साल की, 13 साल की, 11 साल की, 10 साल की ही रह जाती है। दिमागी तौर पर मनुख पूर्ण तौर पर उन्नत नहीं होता, शरीरक तौर पर तो उन्नत हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, पर दिमाग 13 साल पर ही रुक गया, 12 साल तो रुक गया, 11 साल तो रुक गया। इस वास्ते कई दफा देखण दे चांदा है कि बुढ़े बंदे भी बच्चों वाली गल्लां करदे ने। तो इस कर्म का प्रतिकर्म भी हो सकता है, इसका उल्ट भी हो सकता है। लाजमी जे दिन है रात है, रात है तो दिन है। जे 80 साल के बुढ़े के अंदर बच्चों वाली अकल हो सकती है तो किसी बच्चे के अंदर बुजुर्गों वाली अकल भी हो सकती है, इस तो उल्ट भी ऐसा हो सकता है। जे बहुत सारे बुढ़े बच्चों वाली तबीयत दे मिलते हैं तो संसार के कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन्हां की तबीयत दे बुजुर्गी होती है, जिन्हां की सोचनी दे बुजुर्गी होती है। ये गल तो स्पष्ट हो गई कि शरीरक उम्र के नाल नाल दिमागी उम्र भी पूर्ण तौर पर वध रही होवे ऐसा लाजमी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। पर हुण सानू पता किस तरह चलेगा कि यह बंदा बच्चा है तो यह बंदा बुजुर्ग है, क्योंकि उम्र करके तो साफ पता चल जाता है। उसकी वेशभूषा, उसका रंग रूप, नक्शो निगार दसते दिन बई इन्नी उम्र का होगा। पर जे हुण उम्र करके नापना ही नहीं, शरीर करके नापना ही नहीं, अकल करके नापना है, तो फिर किस तरह पता चलेगा यह बुजुर्ग है तो यह बच्चा है। बच्चे की पहचान यह आती है कि उस दे अंदर खेडण दी रुचि बड़ी प्रबल होंदी है, ते खेडण दी रुचि करके वो खिडौणियां दी मंग करता है, उन्हों खिडौने चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसने खिडौणियां नाल खेडना है, उन्हें हर चीज़ नू खिडौना बनाना है, कीमती तो कीमती वस्तु भी बच्चियां दे सामने खिडौना है और वो कीमती चीज़ नाल भी खेडण लग पैणगे। जे घर दे च कोई खिडौना ना होवे तो मासूम बच्चा कई दफा प्यो नूं भी कह देंदा है, तू घोड़ा बन मैं तेरी पिठ ते बैठना है। तो प्यो भी खिडौना बन जांदा है, मां भी खिडौना बन जांदी है, बच्चा ऐसा कर लैंदा है। ते जिस बच्चे की दृष्टि च प्यो खिडौना है, मां खिडौना है, उन्हें गुरु नूं भी खिडौना समझना है, उसने परमात्मा नूं भी खिडौना समझना है। भगत कबीर का तो ऐसा कहना है कि बहुत सारे लोग परमात्मा नूं खिडौना ही समझते हैं। माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जा। संसार दे इतिहास दे च अणगिणत ऐसे बुढ़े मिलते हैं जिन्हां दे अंदर बचपन है, पर कुछ ऐसे बच्चे भी होए ने जिन्हां दे अंदर बुजुर्गी कुट कुट के भरी हुई सी, जिन्हां दे अंदर दूर दृष्टि कुट कुट के भरी हुई सी। प्राचीन इतिहास पढ़िए तां ध्रुव ते प्रहलाद की उम्र कोई खास उम्र नहीं है। प्रहलाद 5 साल का है, ध्रुव 5 साल का है। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक, हर सिमरत अमर अटारे। शरीर करके ये बच्चे ने, पर अकल करके ये बुजुर्ग ने, महान ने। 80 साल का हरनाकश अपने बच्चे प्रहलाद नूं कहिंदा है भी तू रसना दे नाल ए जाप जप, जल हरनाकश थल हरनाकश। ते 5 साल दे प्रहलाद कहिंदन बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। हुण 80 साल का ये बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है, ते 5 साल का जो बच्चा है ये बुजुर्गों वाली गल करता है। अक्सर ऐसा होता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो पूछिए भई नाम किवें जपिए, बंदगी किवें करिए, तो बड़े सुंदर बोल दर्ज ने भगत कबीर दे, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ए 80 साल दे बुढ़े परमात्मा दा नाम इंज जप जिवें 5 साल दे प्रहलाद ने जपया, जिवें 5 साल दे ध्रुव ने जपया। तो उम्र करके ये बिल्कुल बच्चे ने। संसार दे इतिहास दे कुछ बच्चे ऐसे ने जो पूर्ण भगत हुए ने। एक बच्चा ऐसा होया है जो पूर्ण सिख सी, पूर्ण। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जंगल दे बैठे सन। इस बालक ने मिसे प्रशादे और लस्सी दा भरिया होया लोटा गुरु नानक दे अगों रखे। सतगुरु ने प्रशादे छक लै, लस्सी पी ली, भांडे वापस किते, आख्या बालक असी तृप्त हो गए, तू अपने भांडे चुक लै। ये बच्चा, ये मासूम बच्चा जिदी उम्र 7 साल सी, हाथ जोड़ के कहन लगा, बाबा भोजन छकण नाल शरीर तृप्त होंदा है, आत्मा किस तरह तृप्त होंदी है, मन नूं तृप्ति किस तरह नसीब आउंदी है। हैरान हो गए गुरु नानक देव जी, उस मासूम बालक दे सिर ते हथ फेरिया, आख्या उम्र ते तेरी बच्चियां वाली है पर गल बुढ़िया वाली करदा। 7 साल दे इस बच्चे दा नां बाबा बुढ़ा पै गया। और ये गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तक रहा, 6 पातशाहियां तक। हरिमंदर साहब का पहला हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी से। 5 पातशाहियां नूं तिलक उसने अपनी हत्थी लाया। 7 साल की उम्र है तो गुरु नानक देव जी ने कह दिता, बाबा बुढ़ा तू तो बाबा बुढ़ा है, भावें तू बच्चा है पर तेरे अंदर बुजुर्गी छुपी हुई है। जे एक बच्चा बाबा बुढ़ा हो सकता है तो कई बुढ़े बाबे बच्चे भी हो सकते हैं, इस तो उल्ट भी हो सकते हैं। बेशुमार बुढ़े बच्चियां वालियां गल्लां करते हैं, उस तो पता चलता है कि इन्हों का बौद्धिक तौर पर विकास नहीं होया, शरीरक तौर पर विकास हो गया, बुद्धि का विकास नहीं होया। इस वास्ते बुद्धि दे बचकाना विचार अजे भी मौजूद ने। तो संसार के इतिहास के कुछ बच्चे ऐसे हुए ने जो पूर्ण भगत सन, कुछ बच्चे ऐसे ने पूर्ण सिख हुए ने, कुछ बच्चे ऐसे भी ने जो पूर्ण शहीद हुए ने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लाडले 9 साल दे ते 11 साल दे सरहंद दे दीवार दे चिणे गए और अपनी जान दे दित्ती, पर ईमान नहीं दिता, धर्म नहीं दिता, उम्र ते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े वड्डे मनुख डोल जाते ने, ये बालक नहीं डोले। तो कहना पेगा अकल इन्हां दी महान सी, सोचनी इन्हां दी महान सी। संसार दे इतिहास दे च 2 बच्चे होर भी होए ने, उन्हें मुहम्मद साहब दे दोहते हजरत अली दे पुत्र हसन ते हुसैन। करबला दे मैदान दे च यजीद ने प्यासे मार दिते, त तड़पा तड़पा के। लेकिन ये बच्चे झुके नहीं, जालम दे अगों नहीं झुके, मासूम सन, छोटे सन, प्यास बर्दाश्त कर ली। कड़क दी धुप दे च, इराक दी धुप, उस धुप दे च खड़ा कर दिता। करबला दे रेगिस्तानी मैदान दे च, जिथे लू अग वरसा रही सी, ये झुलस के तड़प तड़प के मर गए। लेकिन उस जालम दे अगों झुके नहीं। तो संसार दे इतिहास दे च कुछ बच्चे ऐसे भी ने जो पूर्ण शहीद होए ने। हकीकत राय दा भी अपना अस्थान है। 11 साल की उम्र है शहादत प्राप्त की थी। सहजधारी घराने का यह सपूत से, गुरु नानक की बाणी का इसके अंदर प्यार से। तो असी देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे ने जो पूर्ण शहीद होए ने, कुछ बच्चे ऐसे ने पूर्ण भगत होए ने, कुछ बच्चे ऐसे ने पूर्ण सिख होए ने। लेकिन खला मौजूद से, बच्चा भगत ते बन गया से, बच्चा शहीद भी हो गया से, बच्चा दार्शनिक भी बन गया से, दूरदृष्ट भी बन गया से, लेकिन बच्चा अजय गुरु नहीं बनया से। इस खला की पूर्ति कर देती गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने। आप विराजमान होए और इस खला की भी पूर्ति कर देती। बच्चा भगत भी हो सकता है, बच्चा सिख भी हो सकता है, बच्चा शहीद भी हो सकता है, बच्चा गुरु भी हो सकता है। शरीर का गुरियाई नाल कोई मतलब नहीं, जमीर का गुरियाई नाल मतलब है। जमीर कितनी उच्ची है, बुद्धि कितनी उज्ज्वल है, आत्मक बल कितना महान है। तो गुरु हरकृष्ण जी महाराज ये छाप लांदे ने कि बंदगी भजन का उम्र दे नाल कोई तल्लुक नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का उम्र दे नाल कोई तल्लुक नहीं। बच्चा भी प्राप्त कर सकता है, जवान भी प्राप्त कर सकता है, और बुढ़ा भी प्राप्त कर सकता है। जिस घर दे च छोटे छोटे बालक जपजी साहब पढ़ रहे हों, सवेरे शाम नूं रहराज साहब का पाठ कर रहे हों, समझ लेना चाहिए इस घर दे च गुरु हरकृष्ण जी महाराज का रंग मौजूद है, उन्हां दी देन मौजूद है, उन्हां दियां बरकतां मौजूद ने। बचपने तो ही बंदगी आरंभ करनी है। ये देन, ये रंग, ये जज्बा गुरु हरकृष्ण जी महाराज दी देन है। जो खाका गुरु नानक ने चित्रिया उस दे च नावें गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने त्याग ते वैराग दा रंग भरिया। आप कितने त्यागी ने, आप गुरियाई गद्दी दे मालक ने, पर भोरे दे च छुप के बैठे ने। ते जे गुरियाई, जो गुरियाई गद्दी दे मालक नहीं, ओ बार बाई तखत ला के गुरु होण दा दावा पै करदे ने। इन्ने त्यागी, इतने विरागी आप गुरु ने होंद नहीं प्रगट कर रहे, भोरे दे छुपे बैठे ने। अज एक ऐसा सिख आ गया जिन्हों गुरु वेखण दी जाच सी। कदी कदाई किसे कोल ए जाच होंदी है। सच्चे सिख तो सच्चे गुरु दा पता चलदा है। झूठे गुरु झूठे सिखां दे आसरे ते संसार विच कायम रहिंदे ने। अज एक सच्चा सिख आ गया, इन्हें बाईयां नूं मत्था ते टेकिया, पर शांति नहीं मिली। जिस तरह जलदे हुए दीपक कोल चले जाइए तो रोशनी मिलती है, हिमालिया पर्बत ते चले जाइए तो ठंड मिलती है, फुलां दे कोल बैठ जाइए तो महक मिलती है, रब नाल जुड़े हुए कोल बैठिए तो लाजमी आत्मक शांति मिलती है। साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। मक्खण शालवाणे ने आखिर बकाले विच पुछ कीती, इत्थे सोडी बंस दा कोई होर भी रहिंदा है? तां इक छोटे जिहा दुकानदार ने दस्या, हाँ उस सामने भोरे विच इक रहिंदा है, की ना है, लोकी तेगा कमला कहिंदे ने। पहुंचिया उत्थे भोरे विच, दर्शन करके निहाल होया, कोठे ते चढ़ के कहण लगा, गुरु लाधो रे, आप गुरु ने अपनी होंद नूं छुपा के रखिया है, पर अज जद किसे ने प्रगट कर दिता है गुरु नूं, तां गुरु ने चांदनी चौंक दे च अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। त्यागी इतने अपनी होंद नूं छुपा के रखे है, पर जद होंद प्रगट हो गई तां अपने आप नूं देश ते धर्म तो कुर्बान कर चढ़े। अपने स्वासां दी डोरी नूं तोड़ के आपने हिंदुस्तानियां दे जनेऊ दी डोरी नूं मजबूत कीता। अपना खून डोल के आपने हिंदुस्तानियां दे मत्थे दा तिलक बनाया। ए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दी देन। जिस सिख दे अंदर त्याग दी भावना नहीं, वैराग दी झलक नहीं, समझ लेना चाहिए है, उस सिख दे अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी का रंग नहीं है। त्याग ते मैराग की छाप ला के तस्वीर मुकम्मल हो गई, जिस दी कल्पना गुरु नानक ने कीती सी, जिस दा खाका गुरु नानक ने चित्रिया सी। इतिहास दा अध्ययन करिए तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कोई होर रंग नहीं भरिया। आम कहावत है कि वीर रस दा रंग भरिया नहीं, वीर रस दा रंग ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भर ही दिता सी। दरअसल तस्वीर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक मुकम्मल हो गई सी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उसनों फ्रेम किया। ये तस्वीर फटे ना, टूटे ना, मैली ना होवे, जाया ना होवे, इसनू फ्रेम करना बड़ा लाजमी सी, इसनू शीशे देच मड़ना बड़ा लाजमी सी। तो फ्रेम देच गालबन पंज चीज़ां दी लोड़ पैंदी, एक ते चौखटा, चार कणियां, चार लकड़ां दा चौखटा ते एक शीशा, पंज चीज़ां दे नाल तस्वीर नू फ्रेम किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये पंज रहतां जो दित्तियां उस तस्वीर नू फ्रेम कर छड़िया, जड़ दिता। और जब तस्वीर इन्हां रहतां दे फ्रेम दे जड़ी गई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने स्वयं सजदा किया, आपने खुद मत्था टेकया, सिख दे अगों स्वयं सजदा किया, स्वयं मत्था टेकया, आख्या तस्वीर मुकम्मल हो गई, पूर्ण हो गई। और इस तस्वीर नू टंगया आपने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आधार से, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आसरे से फरमान किया, ए सिख जे तू बाणी नाल जुड़िया रहेगा बाणे नाल भी जुड़िया रहेगा, जे तू अमृत वेले नाल जुड़िया रहा तो अमृत नाल भी जुड़िया रहेगा। ये मेरे पातशाह की महान देन, जिस दिन आप हजूर साहब विच ज्योति जोत समान लगे ने ता आले दुआले सिखा ने खड़े होके बिने की, पातशाह सानू किस दे लड़ला चले, साडा कौन मुहाफिस, असी किस दे नक्शे कदम ते चलांगे। तो साहब फरमान करन लगे, तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो प्रेरणा लैनी, राजनीतिक तौर ते, समाजिक तौर ते, धार्मिक तौर ते थोड़ी रहबरी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज करनगे। तो सिखा ने बेनती की, पातशाह गुरु ग्रंथ साहब थोड़े विचार ने, थोड़ी जोत है, थोड़ा फिलसफा है, थोड़ा ज्ञान है, कदी साडा दिल करे थोड़ा तन वेखना है, थोड़ा शरीर वेखना है, फिर असी कित्थे जावांगे, किहड़े पासे जावांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे उत्थे अगम्मी बचन, सिख सो रहत पंच जो मिल है, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचो में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आस। पंज रहतवानिए सिख जे किधरे मिल जान, जिन्हां दे तन दे उत्ते पंज ककार होवन, जिन्हां दे हिरदे विच पंज बाणियां दा पाठ होवे, जिन्हां दे कंठ विच मूल मंत्र वसे होवे, जिन्हां दी रसना दे उत्ते गुरु दा मंत्र होवे, ऐसे पंजां दे अगर दर्शन हो जान तां साहिब कहण लगे ये मेरे ही दर्शन होणगे। ऐ सिख निश्चय ही जान अज मैं ही तैनू मिलियां, अगर ऐसे दर्शन तैनू नसीब हो जान। सिख बड़े सियाने सन, हाथ जोड़ के बेनती करन लगे, पातशाह किसी ऐसे शहर दे च, पिंड दे च, कस्बे च साडा रहना होवे ते पंजां दे दर्शन ना होवन ते थोड़ा तन देखे बिना, थोड़ा शरीर देखे बिना सानू चैन ना मिले, फिर असी की करिए। लंबी सोच तो बाद मेरे पातशाह कहन लगे, अच्छा कोई एक भी मिले जिहदे तन दे उत्ते पंज ककार होवन, जिहदी रसना दे उत्ते गुरु दा मंत्र होवे, जिहदे कंठ दे च मूल मंत्र होवे, जिहदे हिरदे दे च बाणी दा वास होवे, समझ लेना चाहिदा है अज मेरे ही दर्शन होए ने, अज मैं मिलिया। लेकिन सिख इस दे नाल भी तसली बख्शना होए, हाथ जोड़ के बेनती करन लगे, पातशाह जे एक भी ना मिलिया ते फिर किसे ऐसे शहर दे च, किसे ऐसे मुल्क दे च साडा वासा होवे ते इस तरह दे एक दे भी दर्शन ना होवन फिर की करिए। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, ऐ सिख तैनू दूर जाण दी लोड़ नहीं, तैनू भटकण दी लोड़ नहीं, तू अमृत वेले उठें, पंज बाणियां दा पाठ करें, गुरमंत्र दा जाप करें, मूल मंत्र दा जाप करें, तन दे उत्ते रहतां सजावें ते ज्यों शीशे विच अपना मुखड़ा वेखेंगा ओ मुखड़ा भी मेरा ही होवेगा। तेनू भटकण की लोड़ नहीं, मेरी आत्मा के दर्शन करने ने ते गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करें, मेरे शरीर के दर्शन करने ने तो अपना ही मुखड़ा वेख ले, मैं अपनी सूरत मैं अपनी शकल तेनू दे दी है। साहबान का साफ फरमान है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। शरीर करके गुरु गुरु खालसा है, और जमीर करके गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने। इस वास्ते एक कहावत प्रचलित हो गई, गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ। गुरु पंथ गुरु दा शरीर है, गुरु ग्रंथ गुरु दी आत्मा है। जैसे बुनियाद बिना मकान तो भी हो सकती है, पर मकान बिना बुनियाद तो नहीं हो सकता। जड़ां ते बिना दरख्त तो भी हो सकदियां ने, पर दरख्त बिना जड़ां तो नहीं हो सकता। गुरु ते बिना सिख तो भी हो सकता है, पर सिख बिना गुरु तो नहीं हो सकते। तो गुरु ग्रंथ गुरु दी आत्मा है, और गुरु पंथ ये शरीर है। आत्मा शरीर तो बिना भी रह सकती है, पर शरीर आत्मा तो बिना नहीं रह सकता। तो गुरु दी आत्मा है गुरु ग्रंथ, गुरु दा शरीर है गुरु दा पंथ, गुरु दे पंथ दे दर्शन गुरु दे शरीर दे दर्शन ने, गुरु ग्रंथ दे दर्शन गुरु दी आत्मा दे दर्शन ने। साहबा ने माण नाल कह दिता, खालसा मेरा अपना रूप है, खास रूप है, और खालसा शरीर करके गुरु है। खालसा गुरु है गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीने हो, संकाना कीजे सावधान होए दीजे, अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीने हो। जद सिख दे बारे मेरे पातशाह ने इतनी सिफतो सलाह की थी कि इन ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं, तेरा सदका ही मैं सजिया। दरअसल कोई चंगा बच्चा होवे उनू वेख के कहना पैंदा है, इदी मां धन है, इदा पिता धन है, क्योंकि बच्चा खुशपोश है, खुश मिजाज है, चंगी तबीयत दा मालक है। चंगे सिखा नू वेख के गुरु दी महिमा वधदी है। तो साहब कहन लगे, तू ते मैनू सजा छड़िया, तू मैनू महान बना छड़िया। तो जापदा किसी ने संसा प्रगट किया है, ये किधरे खुशामद ते नहीं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इत्थे माण नाल कह दिता है, या मैं रंच न मिथिया भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी जान के कहना, तू मेरा रूप है मैं तेरा रूप हाँ। जैसे नदी दी मंजिल है सागर, सिख दी मंजिल है गुरु। जद सिख गुरु तक पहुंच जाता है, मंजिले मकसूद तक पहुंच जाता है। केड़ा सिख गुरु तक पहुंच जाता है? जिस सिख नू वेखदे आ गुरु याद आवे, जिस सिख नू वेखदे आ परमात्मा याद आवे। सिख गुरु, गुरु सिख है, नानक भेद ना भाई।